Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, अगर आपने फैसला करा है तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप इतिहास नहीं रच सकते। जिंदगी की राह में अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कई सारी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन अगर आपके अंदर में आत्मविश्वास है तो आप उससे डटकर सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू
प्रोफेसर साहब। हम बात कर रहे हैं इस बार रिलेशनशिप्स की। रिश्ते आज अगर हम देखें तो इतने उलट से गए हैं कि उन्हें सुलझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बनता जा रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है जिससे हमारे रिश्तों में थोड़ी सी और मिठास बढ़ सके?
नायिका जी, जो रिलेशनशिप की बात आपने कही है, आज हमारे जो संबंध हैं, आज जो हमारे रिश्ते हैं, वो जो एक दूसरे को सुख देने के लिए बने थे, जो एक दूसरे के सहयोग के लिए बने थे, रिलेशनशिप्स आर सपोज टू एम्पावर ईच अदर, वो एम्पावर करने के बजाय आज हम एक दूसरे को डिस एम्पावर करने में लगे हैं।
करेक्ट।
बहुत से रिश्ते, चाहे वो हमारे नज़दीक के हैं या दूर के हैं, चाहे वो छोटे संबंध हैं या बड़े संबंध हैं, चाहे वो घर में हैं या पड़ोसियों के साथ हैं, हमारे पर्सनल हैं या प्रोफेशनल्स हैं, हर जगह उन्हें एक नए नज़रिए से, एक नए अंदाज से देखने की ज़रूरत है
जी।
बहुत सी जगह बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे रिश्तों में आ जाती हैं और जिनकी वजह से रिलेशंस सिंपल होने के बजाय कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे होते जा रहे हैं। हम रिश्तों को एंजॉय नहीं कर पा रहे। रिश्ते एक दूसरे को खुशी देने के लिए, एक दूसरे को सहयोग देने के लिए बने थे, लेकिन उनमें कई बार जाने या अनजाने कहीं ना कहीं से कड़वाहट आ जाती है, कहीं ना कहीं से उनमें कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि वही चीज़, वही हमारे प्यारे से प्यारे लोग, वही हमारे नज़दीक से नज़दीक संबंधी, वही हमारे लिए दर्द का, दुख का कारण बन जाते हैं। तो रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा आज क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जिनसे हमारे रिलेशंस मधुर होने के बजाय और ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं
जी।
तो सब मैं बताना चाहूँगा कि 3-4-5 ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर थोड़ा थोड़ा अगर हम ध्यान दें, जैसे हमारा एक ईगो है, कई बार ईगो के कारण प्रॉब्लम आ जाती है।
बिल्कुल।
कई बार हमारी टू मच एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी अपेक्षाएं हम एक दूसरे से रखना शुरू कर देते हैं, उनके कारण दिक्कत आ जाती है। कई बार गलतफहमी होने के कारण डाउट पैदा हो जाता है, हमें लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारी बात को वैसे नहीं समझ रहा जैसे उसे समझना चाहिए।
करेक्ट।
गलत डाउट पैदा हो जाता है, ट्रस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसके कारण समस्या पैदा हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, दूसरा व्यक्ति हमारे से प्यार से बात नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें संबंधों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें ये लगता है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए दूसरा जिम्मेवार है।
Correct.
ये जो हम जिंदगी का एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसका कारण हमें लगता है कि ये जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा हमारा संबंधी है, जो व्यक्ति सामने खड़ा है, वो अगर मुझे रिस्पेक्ट दे, वो अगर मुझसे प्यार से बात करे, वो अगर मुझे अच्छी तरह से समझ ले, वो अगर मेरे को एक्सेप्ट कर ले, वो अगर मेरे से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
करेक्ट।
नॉर्मली देखा जाता है लोग हमारे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो कहते हैं जी कुछ आप ऐसी बात बताओ कि ये जो मेरी सास है, ये जो मेरी बहू है, ये जो मेरे हस्बैंड हैं, हस्बैंड कहेगा ये जो मेरी वाइफ है, ये जो हमारे बच्चे हैं, वो क्या क्या करें ताकि हमारी सारी की सारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए।
करेक्ट।
तो हमारा ध्यान नॉर्मली कहाँ जाता है?
दूसरों की तरफ,
दूसरों के ऊपर बड़ी आसानी से चला जाता है
जी।
लेकिन एक शायर ने बड़ा खूब कहा है कि हमें अपनी लाइफ इस तरह से जीनी चाहिए, जिंदगी के ऊपर उन्होंने कहा है कि जिंदगी एक पल है, ना आज है ना कल है, जिंदगी एक पल है, ना आज है ना कल है, जियो जिंदगी इस तरह से कि जिससे भी मिलो आप वो कह उठे, बस यही उसकी जिंदगी का सबसे हसीन पल है।
बहुत अच्छा।
तो हमें अपनी लाइफ ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे भी हम, जिसके साथ भी रिलेशन में आए, उसे लगे कि जो भी हमारे इनके साथ मोमेंट टाइम गुजरा, ये पल जिंदगी के सबसे बेटर पल है।
प्रोफेसर साहब, अभी आपने कहा कि गलत फहमियाँ हो जाती है रिलेशनशिप में, और कई बार ऐसा होता है कि हम उन गलत फहमियों को सुलझा ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकाला जाए?
चलते चलते जीवन में कई बार हम एक दूसरे के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं
जी।
जो एक रिश्तों को एक मजबूत फाउंडेशन देता है वो है ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट जब एक दूसरे से गायब होने लगता है, एक दूसरे को हम फिर संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं
जी।
और उसके पीछे अगर आप ध्यान से सोचेंगे, उसके ऊपर अगर मनन चिंतन करेंगे कि इस डाउट की शुरुआत कहाँ से होती है, आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऊपर अगर थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं, हम आज बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, जो हम कर रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो शायद दूसरे को दिखाई या सुनाई नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है, एक जितना हम बोलते हैं उससे भी ज़्यादा हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं वो दूसरे तक पहुंचता जरूर है। जहाँ तक गलतफहमी की बात है, हमें जिस व्यक्ति को हमसे गलतफहमी हो जाती है, हमें उसके बारे में गलतफहमी हो जाती है, उसका कारण क्या है, उसके पीछे भी यही है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बाहर से बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और मन ही मन
सोचता
कुछ और है। इसलिए हमें लगता है कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो ऐसा नहीं है जैसा वो अंदर में है, अंदर में फील कर रहा है। कई बार वो बाहर से कहता भी है कि मेरा इस तरह का व्यवहार है, मेरा इस तरह जो मैंने कहा उसका भाव ऐसा नहीं है, आप मुझे ठीक तरह से समझे नहीं है, लेकिन हम अंदर ही अंदर कहते हैं मुझे सब पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या करते हो। वो डाउट उसके ऊपर आता है। उसके पीछे अगर हम अपने आप को देखें तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं, हम भी बाहर से कहते कुछ और हैं और सोचते कुछ और है, और उसी सोच, वो सोच हमारी दूसरे तक भी जाती है, और वो व्यक्ति भी बाहर से बोलता कुछ और है और सोचता कुछ और है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दो आदमी आमने सामने खड़े हैं, एक व्यक्ति दूसरे के घर गया
जी।
अब वो दूसरे के घर जाकर कहता है कि बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। और आप जब भी उसे क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आप आज हमारे घर आए, आपने बाहर से ये कहा, और अंदर ही अंदर आप क्या सोच रहे हो कि कहाँ पर अभी अभी मैं ऑफिस से थका थका आया हूँ, आज कोई संडे थोड़ी है, आज बिना बताए आगे टेलीफोन भी नहीं किया, अब मैं इनको अटेंड करूँ कि मैं दूसरे काम करूँ। अंदर आपके ये चल रहा है और बाहर से आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और वो व्यक्ति भी जैसा आपने किया वैसे वो भी करेगा। अब वो क्या कर रहा है, बाहर से कह रहा है कि बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा थी, सोचा आज मिलके आ जाऊं, लेकिन अंदर क्या सोच रहा है, अंदर वो सोच रहा है कि काम था इसलिए आज आपके पास आया हूं, नहीं तो किसके पास टाइम है आपसे मिलने का।
करेक्ट।
अब दोनों ही व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहे हैं।
करेक्ट।
तो ये संबंधों में आज हम दूसरों को सुख देने के बजाय दूसरे को धोखा देने में, दूसरे को चीट करने में लगे हुए हैं, और उसका कारण यही है कि हम बोलते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच पे ध्यान देना जरूरी है। जितना संबंधों में व्यवहार की बात है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारी बोलचाल अच्छी होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हमारी सोच, जिस रिलेशन को हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जिस रिश्ते को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, उसमें हमें उनके बारे में सोचते क्या है, हमारी सोच क्या है उसके बारे में, उस सोच को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो गलतफहमी पैदा हो जाती है वो ख़त्म नहीं होगी। हम बार बार डाउट करते रहेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा, हम भी वही कर रहे हैं, हम जो करते हैं हमें दूसरे को भी हमारे ऐसा लगता है कि शायद वो भी ऐसा ही कर रहा है, हम भी अंदर से कुछ और हैं बाहर से कुछ और दिखाते हैं, और वो सामने वाला व्यक्ति भी अंदर से कुछ और हो रहा है और बाहर से कुछ और दिखा रहा है। और जितनी जल्दी हम अपने रिलेशन की दीवार को ट्रस्ट के ऊपर फोकस करेंगे, विश्वास पैदा करेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि वो विश्वास से हम उस व्यक्ति के ऊपर एहसान नहीं करेंगे, हम किसके ऊपर एहसान करेंगे?
खुद के ऊपर।
खुद के ऊपर। वो कैसे? क्योंकि जितनी देर आप ट्रस्ट करने के बजाय दूसरे के ऊपर डाउट करेंगे, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसे होने वाली है?
खुद को।
खुद को ही होने वाली है। उतनी ही देर हम अंदर से क्या रहेंगे, डाउट वाली स्टेज में डिस्टर्ब रहेंगे, अंदर ही अंदर क्या होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, अंदर ही अंदर वेस्ट थॉट्स चलते रहेंगे। और जिस घड़ी आपने मान लिया कि दूसरा व्यक्ति समझदार है, वो जो करेगा ठीक ही करेगा, तो वो विश्वास के जो वाइब्रेशन है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी आप दूसरे को भेजेंगे, उससे वो आत्म एम्पावर होगी, और अगर वो गलत रास्ते पे चलने वाली भी है तब भी वो मुड़कर सही रास्ते पे आएगी और उस विश्वास को बनाने की कोशिश करेगी।
जी प्रोफेसर साहब, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की। कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों के अंदर कंपैरिजन करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ फैमिली में तो ये होता है वो होता है, हमारी फैमिली में तो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो एक कंपैरिजन की जो एक बीमारी सी होती जा रही है, जिसकी वजह से हम इनसिक्योर भी फील करते हैं और साथ ही साथ कई बार बहुत अकेला भी महसूस करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए?
बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम बात बात पे दूसरों से कंपैरिजन तुलना भेंट करना शुरू कर देते हैं।
जी,
हमारे पास एक अच्छी कार आई, कार का सुख लेने के बजाय हम उस कार का तब तक सुख ले पाते हैं जब तक हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार के पास उससे अच्छी कार नहीं आ पाती। जैसे उनके पास आएगी हम अपनी चीज़ का सुख भूल के ये सोचना शुरू कर देंगे उनकी अब हमसे बेटर है।
करेक्ट।
लेकिन कंपैरिजन एक बीमारी है, ये हमें मानना पड़ेगा, और इसको दूर करने का तरीका यही है कि जो आपके पास है, जो आपको मिला है, वो आपको सबसे बढ़िया मिला है। हर एक व्यक्ति एक अलग यात्रा पे है, अलग जर्नी पे है।
Correct.
उसकी अचीवमेंट्स अलग हैं, आपकी अचीवमेंट्स अलग हैं। को हर व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, हर आदमी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति भी नहीं बन सकता।
Correct.
हर आदमी के पास बढ़िया से बढ़िया कार भी नहीं आ सकती। तो अचीवमेंट्स के आधार पर कंपेरिजन करना ये कोई समझदारी नहीं है। अगर हमें कंपेरिजन करना है तो ये करें, देखो ये कितना अच्छा व्यवहार करता है, क्या हमें भी तो वैसा व्यवहार करना चाहिए, उस रेस में हमें आना चाहिए, उस कंपटीशन में आना चाहिए, ना कि ये कह कि ये ऐसा है तो हम भी ऐसे बने, हम भी उसकी तरह फिजिकल अचीवमेंट्स की ओर चलें। क्योंकि जितनी देर आप दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन के भी दो पहलू हैं, एक तो है आपके अंदर सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स पैदा कर देगा, ईगो क्रिएट कर देगा, एक है जो आपके अंदर इन्फीरियरिटी हीन भावना पैदा कर देगा।
जी,
अगर आपके पास दूसरे से बढ़िया है तो आपको लगेगा कि मैं तो सबसे बढ़िया हूँ, ईगो प्रॉब्लम, मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं।
करेक्ट।
अगर आपसे ऊपर दूसरों के पास है तो आपको हीन भावना आ जाएगी, उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे। तो बेटर इज जो आपको मिला है, जैसा मिला है, उसमें खुश रह के, उसमें संतुष्ट रह के अपने अंदर वो भरपूरता की फीलिंग हम लाएं। कंपैरिजन कई बार बच्चों का भी हम करते हैं।
Correct.
बच्चों को सिखाने के लिए कई बार हम सोचते हैं कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे मार्क्स लेता है और तुम कितने डबर हो, तुम्हें ये भी नहीं आता। तो उससे क्या होता है कि बच्चा मोटिवेट होने के बजाय क्या हो जाता है,
डीमोटिवेट
हो जाता है।
कई बार ऐसा होता है कि प्रोफेसर साहब, हमने ये देखा है कि बच्चों के अंदर में हम बहुत ज़्यादा उन्हें क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं। ऐसे सिचुएशन में बच्चा अपने आप को बहुत इन्फीरियर महसूस करता है, तो ये किस हद तक सही है और अगर बदलना है तो कैसे बदलें?
बिल्कुल सही बात आपने कही। आमतौर पर घरों में हम देखते हैं बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइन पे लाने के लिए, भावना तो उनकी यही होती है कि बच्चा सुधर जाए, बच्चा ठीक हो जाए, तो हम क्रिटिसिज्म का भी आधार ले लेते हैं।
Correct.
और हम सोचते हैं कि शायद क्रिटिसाइज करके बच्चा डिसिप्लिन में आ जाए।
Correct.
लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि जिसको भी आप क्रिटिसाइज करोगे उसकी जो मेंटल स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है वो उस वक्त इतनी डाउन चली जाएगी कि वो आपकी द्वारा कही गई अच्छी से अच्छी बात को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। जो व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, जिसे आप चेंज करना चाहते थे, उस बच्चे को आप लाइन पे लाना चाहते थे, तो उसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी तो है ही। लेकिन जिस घड़ी आपने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो उसके अंदर जो खालीपन है, उसके अंदर जो वो कमजोरी है, वो और बढ़ती जाएगी
जी।
और हम बच्चे को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है आई एम राइट और बच्चे
गलत है।
चिल्ड्रन आर ऑलवेज रॉन्ग, बच्चे हमेशा रॉन्ग है। जो वो ड्रेस पहनते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, सब गलत। जिस तरह वो सवेरे लेट उठते हैं, वो गलत। जिस तरह वो रात को लेट जागते हैं, पार्टीज में जाते हैं, वो गलत। बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, बच्चे जो कैरियर चूज कर रहे हैं, हमें लगता है वो भी रॉन्ग है। सारा दिन वो मोबाइल पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, वो गलत। जिस तरह के उनके दोस्त हैं, वो गलत। जिस तरह के वो खाना खाते हैं, उनके फूड हैबिट्स हैं, वो गलत। तो हमने क्या एक क्राइटेरिया बना दिया है कि बच्चे तो हमेशा गलत होते हैं और पेरेंट्स
सही होते हैं।
अब जिस घड़ी आपने बच्चों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि आप गलत हैं, तो आपने कौन सी एनर्जी उनको भेजी?
नेगेटिव
एनर्जी हमने भेजी कि हमें तुम्हारा ये व्यवहार, हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, हम तुम्हें लाइक नहीं करते। और जब नेगेटिव एनर्जी आप उनको भेज रहे हैं कि यू आर बैड, यू आर रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग देम, उनको स्वीकार करने के बजाय कि तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो, वो एक पॉजिटिव एनर्जी हो सकती थी। हम उनको कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तो अब बच्चे भी क्या सोचते हैं?
हाँ,
मैं गलत हूँ नहीं। बच्चे उसको सोचते हैं कि हम तो सही हैं, तुम गलत हो।
ओके।
वो उल्टा पेरेंट्स को सोचते हैं, चाहे वो कहते नहीं भी हों उम्र के हिसाब से, लेकिन उनके अंदर भी ये सोच पैदा होती है कि गलत हम नहीं हैं, गलत
वो है।
तुम हो। और इसको हम कह देते हैं कि जनरेशन गैप आ गया।
करेक्ट।
लेकिन जनरेशन गैप कुछ नहीं है, केवल सोच का फर्क है। हमने दूसरे को ये समझ लिया कि वो हमेशा रॉन्ग ही होता है, ऐसा नहीं है। राइट और रॉन्ग, ये भी तो हमने अपना पैमाना खुद ही बनाया।
करेक्ट।
किसी को कोई चीज़ राइट लगती है, मैं गाड़ी 90 की स्पीड पे चला रहा हूँ तो मैं कहता हूँ आई एम राइट, लेकिन दूसरा आदमी जो 120 की स्पीड से चलाता था, वो कहेगा तुम तो बहुत स्लो चला रहे हो। अब उसको 120 की स्पीड अच्छी लग रही है, मेरे को 90 की स्पीड अच्छी लग रही है। एक कहता तुम फास्ट हो, एक कहता तुम स्लो हो, एंड हु इज राइट?
करेक्ट।
हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है। एक आदमी बड़ा धीरे धीरे काम करता है, दूसरा कहता थोड़ा फास्ट किया करो, और जो फास्ट कर रहा है स्लो वाला उसको कहेगा तुम बहुत जल्दी काम करते हो, काम बिगड़ जाएगा। अब सही क्या स्पीड है, ये भी तो हमारे अपने अपने पैमाने हैं। कोई बच्चा 4 बजे किसी के घर में पेरेंट्स उठते हैं, बच्चा 6 बजे उठता है तो पेरेंट्स कहते हैं तुम लेट उठते हो, सूरज निकल जाता है 6 बजे तब तुम उठते हो। अब उस घर में सवेरे उठने का टाइम क्या है? 4 बजे उन पेरेंट्स के अनुसार। अब किसी घर में पेरेंट्स ही 8 बजे उठते हैं, उस घर में बच्चे 10 बजे उठे, तो वहाँ पर पेरेंट्स के हिसाब से राइट टाइम क्या है? 8 बजे उठना। तो अभी 4 बजे उठना या 8 बजे उठना, ये भी तो हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो हमें लगता है हम सही हैं और दूसरे गलत हैं, इसलिए हम क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करके कभी भी बच्चे किसी सही लाइन पे नहीं आ सकते। अगर बच्चों के बारे में हम कभी भी नेगेटिव लाइन बोलेंगे, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो डफर हो, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें ये भी नहीं आता, नलायक कहीं के, तो जैसे जैसे उनको नलायक बोलेंगे तो वो नलायक बनेगा बच्चा या इंटेलिजेंट बनेगा? हम कहेंगे कोई घर में कोई आ गए, उनके सामने भी बच्चों के बारे में कहने लग जाएंगे ये बच्चा तो बहुत शरारती है, ये तो हर रोज़ इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, ये बच्चा तो ऐसा है, तो वो बच्चा सुन सुन के क्या सीख रहा है? वो नेगेटिव लाइन उसको मोटिवेट नहीं कर रही सही लाइन पे आने की, वो नेगेटिव लाइन उसको डीमोटिवेट कर रही है, वो और उस बुराई की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा और भागेगा।
बिल्कुल।
तो ना क्रिटिसाइज ना क्रिटिसिज्म, किसी की तारीफ करके आप काम करवा सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसका जो सेल्फ एस्टीम है, जो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे आप बढ़ा सकते हैं केवल और केवल उसकी तारीफ करके। उसकी ना दूसरे बच्चे के साथ, पड़ोसी के बच्चे के साथ, किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करो। केवल बच्चों में ही नहीं, हम आपस में किसी भी रिलेशन में जहाँ भी हम आते हैं, ना किसी से कोई कंपैरिजन करें, ना किसी का कोई क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज जब हमें ही अपना अच्छा नहीं लगता, क्या दूसरों को अच्छा लगता होगा?
True.
हमें अपनी आलोचना अच्छी नहीं लगती, हम क्या चाहते हैं कि सभी हमारी प्रशंसा करें, सब हमें प्रेज करें, हमारे काम की चारों तरफ वाह वाह हो। लेकिन हम दूसरे की गलतियां निकालने लग जाते हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि गलतियां वो निकालता है जो कोई काम नहीं करता, और गलतियां उनसे होती हैं जो काम करते हैं। जहां काम किया जाएगा गलतियां वहां होंगी, और गलतियां वहां ढूंढी जाती हैं जहां पर कोई काम नहीं होता। तो दूसरों की गलतियां देखने के बजाय उनके अंदर जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनको अगर बाहर लाएं तो वो हमारे से संबंधों में नज़दीक आएंगे, हमारे से उनके रिलेशन अच्छे बनेंगे, उन्हें लगेगा कि ये व्यक्ति से हमारी लाइन मिलती है, हमारे संस्कार, हमारे विचार मैच कर रहे हैं। फिर वो हमारे संबंधों में हम एक दूसरे को कष्ट देने के बजाय, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय, हम क्या करेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे को सुख देने लगेंगे। तब देखो कि ये ज़िंदगी कितनी अच्छी बन जाएगी, कितने सुख इस ज़िंदगी में मिलेंगे, कितनी सुनहरी जिंदगी हम जीने के हकदार बन जाएंगे।
बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रोफेसर साहब कि हमें एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये भी एक चीज़ आज बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हम अपने आप में रहते नहीं हैं, हम खुद बदलना बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदले। तो ये सोच किस हद तक सही है?
ये जो बात आपने कही कि व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू चेंज अदर पीपल, दूसरों को बदलने के लिए 5-6 ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो हम बहुत जल्दी दूसरों को बदल सकेंगे। सबसे पहले तो वही व्यक्ति दूसरे को बदलने का हकदार है जिसने खुद को बदला हो। हम दूसरों को तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब हमारा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा। दूसरों को वही सुधार सकता है जिसका अपना जीवन एक एग्जाम्पल होगा, एक उदाहरण होगा, एक आइडियल होगा। हम लाइट हाउस अगर बनेंगे तभी दूसरे जहाज़ों को रास्ता मिलेगा।
करें।
अगर बिना लाइट हाउस बने हम दूसरों को केवल उपदेश देंगे, केवल कहेंगे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, दूसरों के ऊपर असर होने वाला नहीं है। हमें दूसरों को एक्सेप्ट करने पड़ेगा, रिस्पेक्ट देने पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे कि कैसे उन सारी चीज़ों को जीवन में ला के उस प्रोसेस की डिटेल में जाके हम उसको एनालाइज करके एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दूसरे अवश्य बदलेंगे। केवल हमें अपनी आत्म ज्योत जलानी पड़ेगी, खुद को एम्पावर करना पड़ेगा, खुद को उस लेवल तक लाना पड़ेगा कि हमारी कही हुई बात का दूसरों के ऊपर असर हो जाए।
बिल्कुल ठीक है आपने प्रोफेसर साहब, ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हमें प्रोसेस ऑफ चेंज, ये जो आपने न्यू टर्म हमें इससे बताया है, इसके बारे में हम और भी जानना चाहेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन आज के चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों आज हमने क्या जाना, अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, अगर हम किसी की कंपैरिजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे होते हैं और उनके अंदर के डिटर्मिनेशन को भी कम कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसे करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा और ही ज़्यादा नुकसान होगा, और आपका भी नुकसान होगा और सामने वाले व्यक्ति का भी नुकसान होगा। तो इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।